आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समयसार कलश 15 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए सौरभ्या चकाशे चित्त भावाय भावाय सर्व भावान
सर। आपको आगे कराना है
इस ज्ञान गुणो आत्मा सिद्ध मही भी साध साधक भावे में सिद्धि जो सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि माने क्या? जो स्वयं सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं। जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो प्रत्येक आत्मा को भगवान बनने का अधिकार प्रदान करता है। सब दर्शनों में तो परमात्मा विदेह और जीवात्मा परमात्मा जुदे हैं और जीवात्मा जुदे हैं। वो जीवात्मा परमात्मा की गुलामी तो कर सकते हैं लेकिन वो कभी परमात्मा नहीं बन सकते। वे परमात्मा की आराधना पूजा भक्ति करें उनमें लीन हो जाएं, उनमें लीन होकर अपनी सत्ता की मिटा सकते हैं लेकिन स्वयं सर्वसत्ता संपन्न सर्वप्रभुता संपन्न भगवान नहीं बन सकते। जैन दर्शन ये एक ऐसा दर्शन है कि वो ये कहता है कि जितने भी सिद्ध बने हैं आज तक वो एक दिन हम और आप जैसे ही थे और हम और आप से भी गए जीते। जैसे कि कल आपको कहा था ना कि भगवान महावीर ने सेठ की पर्याय में सम्मान पाया था तो उस सेठ की पर्याय से तो हम बहुत अच्छे हैं। विचार करो उसका जीवन भी कितना क्रूर, हम भी बहुत क्रोधी होंगे। हमें आपने से भी कोई ऐसा नहीं है कम क्रोध है, हमें भी बहुत है चारों कथाएं हैं लेकिन कम से कम शेर जैसा तो नहीं है। हमारा जीवन भी अपवित्र होगा, खान पान भी ठीक नहीं होगा लेकिन कम से कम शेर जैसा तो नहीं है। ध्यान देना, और शेर भी कैसा कि हिरण का शिकार करता हुआ, आपने चित्र देखा होगा ना, और उसको दो मुनिराज आकाश से उतर के आए और उपदेश देते हैं और उसने कुल्ला नहीं किया, वो भी झूठा था, मानी सिद्धि। हाथ भी खून से सन गए थे, मुनिराज ने भी पहले ये नहीं कहा कुल्ला करके आओ फिर समझाएंगे, और उन्होंने समझाया और वो समझ गया और उसने अपना आत्मा का अनुभव करके सर्वदर्शन पा लिया। ये बात हमारे शास्त्रों में क्यों लिखी, मैंने बहुत विचार किया कि आचार्य ये बताना चाहते हैं कि मांस खाने वालों को भी सम्मान हो सकता है। ध्यान देना मेरी बात, ये बात हमें बताई क्यों, इससे लोग ऐसा आदमी तो निकाल सकते हैं कि पंडित हमारे क्यों उपदेश देते हो अपनी सना पानी छोड़ो है। तो मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि इसमें एक रहस्य है कि जो जीव ऐसा मान के बैठ गए हैं कि हम तो बहुत ही नालायक हैं, दीनहीन हैं, हमारा तो आचरण बहुत खराब है, आज का जमाना ऐसा है कि जिसमें अच्छा आचरण चल ही नहीं सकता है, बेईमानी करना कहो चल ही नहीं सकता, इसलिए हमारा तो उद्धार होने से रहा। अब तो अगले हम में देखेंगे, अभी तो दुनियादारी कोई देख रहे, अभी तो काम धंधे कोई देख रहे, मनीष जी अगले हम में तुम्हारी आत्मा परमात्मा को सुनेंगे। उनके लिए उन्होंने वो कहानी लिखी है कि तुम इतने गहरीते तो नहीं हो, ऐसी अवस्था वाले भी अपने को पहचान कर अपना हित कर सकते हैं। उसमें से ये मत निकालो कि हम मांस खा सकते हैं, मांस खाने वाले भी सुधर सकते हैं, ऐसा अर्थ निकालो उसने। उसके बाद उन्हें मांस नहीं खाया। शेर की तो आजीविका ही दुनिया कैसी है, न उनके दुकान है न धंधा पानी है, उनके दांत भी ऐसे हैं, पेट भी ऐसा है कि जिसके अलावा मांस के अलावा दूसरी चीजों में पचे भी नहीं, फिर भी उसने उसके जीवन में भर भर बाद में नहीं खाया। तो नहीं खाया वाली बात है कि खाया वाली बात है? अपना जो इंटरनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना वहां बहुत उसकी बात करी थी और हम भी वहां विदेश गए थे तो बहुत इस तरह से प्रश्न आते थे कि साहब इस घास खाने में इस अनाज में प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, फला नहीं है और मांस खाने से मांस बढ़ता है, तंदुरुस्त रहना है तो इसके बिना चल नहीं सकता है, ऐसा उनको पढ़ाया जाता होगा ना, ऐसे प्रश्न बहुत आते थे। तो मैंने उनको एक ही बात कही, एक बात बताओ कि जिन पशुओं का तुम मांस खाकर के मजबूत बनना चाहते हो, वे पशु क्या खा के इतने मजबूत बने हैं ये तो बताओ। मांस जिन पशुओं का खाया जाता है वे सब बेचारे घास खाते हैं, बकरी से लेकर पशु पक्षी जो भी। मांसाहारियों का मांस नहीं खाया जाता, कुत्ते का मांस भी खाता है। फिर टीके किसको मिलते हैं, जितना प्रचलन हो गया है उसके हिसाब से कहाँ मिलते हैं, गिनती के तो सिर है दुनिया में। गाय है, बकरी है, मैंने बिल्कुल जो शाकाहारी है उनके ही मांस खाते हैं, तो उनके मांस में से वो विटामिन कहाँ से आए, घास में से आए भाई साहब, बिता करना। और मैंने कहा हाथी कितना वजन खींच सकता, कितनी ताकत है हाथी में, तेज तारा होगा, बदमाश होगा, लेकिन ताकत नहीं है हाथी जैसी शेर में। शेर की आज तक किसी ने सवारी नहीं काट पाई, शेर कभी दुनिया के किसी काम नहीं आया मारने पीटने के अलावा। सर्कस में नहीं जो शेर की सवारी पर बैठ जाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए दो मिनट को बैठते हुए वो गुजराता रहता है। और हाथी कितना कितना मजबूती से काम करते हैं, जंगल में रुख्या खींचते हो, क्या क्या करते नहीं करते हैं। तो वो हाथी में वो ताकत क्या खा के आती है मुझे बताओ। एक दिन दुनिया को फैलाकर कि घास में ताकत नहीं है, अनाज में ताकत नहीं है, पत्ती में सब्जी में ताकत नहीं है, और बात तो उल्टी है। क्योंकि हमारे शरीर को जिस चीज की आवश्यकता है वो तो इनमें है, ध्यान देना। अब हमने उसको प्रयोग कर लिया, उसका माल तो हमने शरीर में यूज कर लिया, अब तो वो बेस्ट रहा, अब तो वो भोग रहा। तो जो मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यकता, प्राणी के शरीर के लिए, वो तो उपयोग हो गया। अब बाकी जो बचा हो तुम खाते हो वो तो बिना काम का ही बचा है। इसलिए ये तर्क बहुत ही गलत है। ये कहते हैं जैन दर्शन ये एक ऐसा दर्शन है कि जिसने कहा कि हमारे भगवान महावीर वगैरह के 10-10 भव अभी आपको दिखाएंगे संत कल्याणक में, कि भाई इनके 10 भव पहले ये थे, ये थे, तो भगवान को वो इस भव में बने। 10 भव पहले की चर्चा से क्या फायदा, राहुल गांधी बनी दिया क्यों पुराने 10 भव की बात करते हो क्यों। हम तो ये कहते हैं कि इस भव में भी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक वे भगवान नहीं है। जन्म तो बालक का होता है, इस चर्चा तो शाम को कल करेंगे, जन्म कल्याण की चर्चा जब करेंगे, जन्म कल्याण की चर्चा जब करेंगे, लेकिन यहाँ तो उसके 10-10 भव पहले की कहानियां, 10-10 भव की नहीं। आज नाथ के समय में मारी था महावीर का जी, असंख्य भव पहले की कहानियां, भीड़ के भव से लेकर इतने पुराने जमाने में जाने की क्या जरूरत थी। भगवान महावीर का जीवन चरित्र बताना था तो जन्म से लेकर निर्वाण तक बता देते, विचार करो अपने अंदर से। लेकिन उनमें भी आचार्यों का यह उद्देश्य है कि यदि हम जन्म से लेकर के निर्वाण तक बताते तो लोग ये समझते कि अकेले मनुष्य या पुरुष ही धर्म कर सकते हैं, नर से नारायण बनने की बात रहती, पशु से परमेश्वर बनने की बात नहीं रहती, आत्मा से परमात्मा बनने की बात नहीं रहती। इसलिए वे इतने पीछे गए कि साथ में नरक में भी गया कृपष्ण नारायण महावीर का जी, तो साथ में नरक का नारी जी भी भगवान बन सकता है, स्वर्ग में भी गया, निगोद में भी गया, जहां से भी कोई भी जगह का जीव हो तो भगवान स्वभाव से है और पर्याय में भगवान बन सकता है। इस बात का ध्यान कराने के लिए पूरब भव पर भ्रम में गया। और बात समझना, भगवान महावीर के निर्माण वर्ष में मैं महावीर से किताब लिख रहा था, तो उस वक्त यही आंदोलन था कि भगवान महावीर का जो जीवन है उसमें घटनाएं नहीं है, सीधा सच्चा है। घटनाएं तो जब हो तो उन्हें शादी की हो, विवाह किया हो, तो कवियों को कुछ राग रंग का लिखने का मजा आवे। अब सीधा सच्चा आदमी ना उद्यमी, बचपन भी शांति से जीता, जवानी भी बैराग में गई, और फिर केवल ज्ञान हो गया कि क्या चरित्र लिखे। विषय कसाय का वर्णन करने की जिनकी रुचि है उन्हें बीतरारी भगवान महावीर में क्या मिले। भगवान महावीर का जीवन तीन पंक्तियों में लिखा जा सकता है। कौन कौन सी? आरंभ के 30 बरस घर में रहे पर रहे न रहे बराबर।
क्यों?
बीच के 12 बरस जंगल में परम मंगल की साधना करते रहे और अंतिम 30 बरस सारी दुनिया को परमात्मा बनने का मार्ग सुझाते रहे। वह कितनी सी कहानी है भगवान महावीर की। बोल क्यों? तो लोग ये समझेंगे कि बस सीधे सच्चे महावीर जैसे बालक ही आ रहे बन सकते हैं, राजाओं के लड़के भगवान बन सकते हैं, और जो शादी नहीं करें वे बन सकते हैं। तो उनको उन्होंने पिछले भवों तक ले गए, पशुओं के भी, कि भाई सब बन सकते हैं, ये बात बताने के लिए पिछले भव दिखाए।
क्यों?
समझ में आएगा? और दूसरी बात विचार करें कि हम समय सार में कितना ही पढ़े और पढ़ाए कि आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है कि जन्म से पहले हम थे के नीचे, क्या पता कि 5 भूत मिलकर के बन गए हैं हम। अब मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग नरक? कहते तो है पंडित लोग, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं, देखा तो सबने है, याद नहीं हो वो अलग बात
है।
देखा सबने है क्या? बहुत दफे देखा है, लेकिन अगर याद नहीं है तो लोग ऐसा कहते ही हैं कि किसने देखा। और पंडित जी के चक्कर में कमाई धमाई छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके, अगला भव तो किसी ने देखा नहीं, और इस भव की मौज मजा और छोड़ रहे, ऐसी बेवकूफी हम नहीं करें। उनके लिए जो हमारे प्रथमान योग है, ध्यान देना, उन्होंने 9 भव की कहानियां लिखी और हमने बचपन से वो पढ़ी, तो जो समय सार की गाथाएं चिल्ला चिल्ला कर नहीं सिखा पाई थी कि आत्मा अनादि अनंत है, उन कहानियों के माध्यम से हमारे संस्कार में घुस गया। क्या? हाथी मर के आदमी हो गया, आदमी मर के हाथी हो गया। समझ गए ना? एक जन्म से हम कहीं से आज पैदा हुए, हम नए पैदा नहीं हुए, हम इस मनुष्य भव में कहीं से आए हैं और मरने के बाद हम खत्म नहीं हो जाने वाले हैं, कहीं जाना है। ये बात जब तक पूर्व भव और परभव की कहानियां नहीं बताई जाएंगी बच्चों को, तब तक उनको कैसे समझ में आएगा। इसलिए वो वर्तमान योग के साथ बहुत उपयोगी है, भले ही उसमें और कुछ नहीं आए, चाहे उसमें तत्व की बात हो चाहे नहीं हो, चिंता मत करना, ये महातत्व की बात है उसमें। ये तो लिखाई है ना कि पहले कहीं स्वर्ग में थे और फिर भगवान अपनी कृष्णा के गर्भ में आए, तो सुरग में थे और वहां से आए, तो सुरग आ गया ना उनकी समझ में, सुरग कोई चीज है। और राजा सैनिक मर के नरक गए, वैसे तुम भूगोल से नरक समझाओ तो किसी की समझ में नहीं आए, लेकिन कहानी से उसके दिल में बैठ जाता है सुरग और नरक। फिर वहां से वहां से वहां से वहां से वहां से वहां गए। इसलिए भाई ये बहुत उपयोगी चीजें हैं, जब सब दिखाएंगे ना अभी। ये तो प्रतिष्ठाचारी विद्वान है ना, हमें इसलिए जो बुलाते हैं, ये जो दिखाएं उसका औचित्य हम आपको बताएं। कैसा साहब फिर एक बता दिया, तेरे देव हो गए, फिर मनुष्य हो गए, फिर देव हो गए, फिर मनुष्य हो गए, छह दफे जैन को क्यों उछालते? सीधी बात करें ना, उसमें एक रहस्य है कि ये आत्मा की अनादि अनंतता। एक कॉलेज में मैं बात कर रहा था तो एक प्रोफेसर साहब बोले कि इन गप्पों से क्या फायदा है, मेरे क्या फायदा क्या होता है। बोले देश की एकता के लिए, आज देश में कितने दंगे होते हैं, आज विश्व राष्ट्रीयता का जमाना आ गया है, मैंने कहा उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। सुनो, क्योंकि इस शास्त्र में ऐसा पढ़ा उसने कि हिंदू मर के मुसलमान हो गया और मुसलमान मर के हिंदू हो गया। ध्यान देना, तो अंतर में उसको जो बाप बेटे को सिखाता है कि बेटा ये मुसलमान बहुत खराब होता है, ऐसा कभी भरोसा मत करना। और जब वो शास्त्र में पढ़े गए मुसलमान मर के हिंदू हो जाता है, हिंदू मर के मुसलमान हो जाता है, तो बाप को याद आ जा रहे कहीं मैं मर के मुसलमान हो गया तो जो मैंने बेटे को पढ़ाया है वो मेरे ही विरुद्ध काम आएगा। ये पूर्व भक्ति और परभव की कहानी देश के भी हित में है। क्यों? जाति के भी हित में, हम जातिवाद फैलाते हैं, भाषावाद। क्यों? हिंदी अंग्रेजी, तो यहाँ का मर के चीनी मर के हिंदुस्तानी हो सकता है, हिंदुस्तानी मर के चीनी, तो किसी दूसरे देश वालों से हमें घृणा का भाव कम होता है। बोला तुम्हारे देश के लिए ठीक है कि नहीं, तुम्हारी राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक है पूरा भव्यों की कहानी। क्यों अभी आज अग्रवाल की लड़की खंडेलवाल के चला जा तो क्या हो गया, देश लुट गया। लेकिन वे बताएं कि अग्रवाल का लड़का मर के खंडेलवाल के पैदा नहीं, मुसलमान के भी पैदा हो सकता। आत्मा तो वही है कि देह का चोला बदलने के बाद में क्या, तो इसका चित्त विशाल होता है। आदमी मर के बैल हो सकता है और बैल मर के आदमी, तो बैल गाड़ी पर बैठा हुआ बैल को सोचे मारते वक्त जरा आएगा कि कल में बैल हो गया और ये गाड़ीवान हो गया तो ये मेरी ऐसी सताई करेगा। तो प्राणियों पर भी दया आएगी। हमारे शास्त्रों में लिखा के राजा मर के हिस्सा में कीड़ा हो गया, दिखा तो नहीं लगा। किसी मुनिराज ने बताया कि तुम्हारी उम्र 7 दिन की रही है और मर के तुम अपने ही हिस्सा में कीड़ा हो गए। तो राजा को चिंता, हरे राम क्या होगा। बेटे से बोला, बेटा मैं मर जाऊं तो मेरी हिस्सा को तुम देखना कि मैं वहां पैदा हो रहा हूं तो मुझे तत्काल मार डालना, मैं नहीं लेना चाहता हूं, मुझे मार डालना तत्काल। बेटे ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। और जब वो मारने गया तो कीड़ा जान बचा के यहाँ वहां भागे, हिस्सा के अंदर घुस गया। वो बहुत पकड़ने की कोशिश करे लेकिन वो जान बचा के भागे। बेटा महाराज के पास गया, महाराज पिताजी की आज्ञा पालन करने जाता हूँ तो पिताजी भागते हैं। जब उन्होंने कहा था कि मुझे मार डालना तो प्रेम से मर क्यों नहीं जाते हैं, क्या बेटा वो जब की बात थी। अब इस पर्याय में गया तो उसमें मगन हो गया, मरना नहीं चाहता। नरक गति से तुरंत गति अच्छी क्यों मरनी जाती, इसीलिए नरक गति नारकी मरना चाहता लेकिन मर नहीं सकता। और त्रियंत मरना नहीं चाहता है वही मगन हो जाता है। जो कैसी विचित्रता है, जो मरना चाहता है मर नहीं सकते, जो नहीं मरना चाहते हैं मर जाते। तो ये बता करके हमें शक्ति के कीड़ा पर भी घृणा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो शक्ति का कीड़ा हमारा बाप भी हो सकता, बाप कहानी सच्ची झूठी जो होगी होगी, सच्ची होगी झूठी नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान में मत देना। लेकिन इससे एक सीख मिली कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती पंडित जी, तुमने कहीं तो कहीं शास्त्र की बात नहीं होती तो हम तुम्हें देख लेते। हमारा बाप शक्ति का कीड़ा, ये तुम्हारा नहीं राजा के बाप की बात है। लेकिन राजा के बाप की बात कह के हम सबको बताना चाहते हैं आचार्य। पहले के राजा लोग जरा गर्म मिजाज ज्यादा होते थे और उन्हें कोई बात पर नाराज हो जाए तो एक मिनट में फांसी पर चढ़ा दे और खुश हो जाए तो कन्या दे दे और आधा राज्य, ऐसे किस्से का भर पड़े होंगे ना। इसलिए कवि लोग बहुत घबराते थे उन्हें समझाने के लिए, एक कहानियां किस्तों में समझाते थे कि समझ जाए तो ठीक और न समझे तो हम तो कहानी कही है महाराज, तुमसे कुछ नहीं कही। क्या अब किसी राजा से कह के तुम मर के भिस्ता के कीड़ा हो गए तो फिर तुम्हें जिंदा रह सकते थे, तो उन्होंने उन राजा की नहीं किसी राजा की बात कही। तो एक राजा ऐसा था, महाराज तुम्हारी बात में एक राजा की बात है, तुम समझ जाओ तो तुम्हारी है और नहीं समझे तो हम तो एक राजा की बात कहते हैं, समझ में आया ना। लेकिन उसका असली अर्थ यह है कि जैन धर्म अहिंसामय है तो हम अपने हितुओं की हिंसा नहीं करने को ये अहिंसा मान बैठे हैं। सर्व प्राणी की अहिंसा होनी चाहिए, हमारी अहिंसा आज मनुष्यों तक सीमित रह गई है, पशु पक्षियों को हम कोई गिनते ही नहीं है। मैं एक बात कहूं, अपने बेटे बहू आपस में बात करते हो और हम बैठे हो तो उनमें कोई मर्यादा तो रहती ना बात करने की। अरे माँ बाप हो जवान बेटा बैठा हो तो उनमें भी मर्यादा रहती है, रहती ना। और घर में गाय बंधी हो तो मर्यादा रखते तुम, तो गाय हो तो जीवी नहीं। तो आजकल के मतलब नौकर चाकरों को भी यही समझने लग गए, बर्तन करने वाली है, पोता लगाने वाला है, जो मेरे कोई जीवन ही नहीं। अपने जीवन में व्यवहार में कोई दूसरा पुरुष हो तो मर्यादा रखते कि नहीं रखते, गाय भैंस को वैसा समझे, कीड़े को करो। वो कहते हैं कि तुम चिंटी को भी वैसा मत समझो, एक जीव नहीं है, समझ में आए ना, मर्यादा में रहो। तो हमारा ये प्रथमान योग, हमारे 10-10 भक्ति कहानियां हमारे पंच कल्याण हमको ये बात सारी दुनिया से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा मत करो ये बताते हैं। अब बोलो तुम्हें क्या कहना पृथ्वानियों के विरुद्ध। नौ नौ भक्ति कहानियां ठीक है क्या गलत पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, बोली हम उसको समझते नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा मैं समझा कुछ आप, क्योंकि लोग जो मैं समझता हूँ कि जब लोग नहीं बोलते हैं तो यही मान रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, और कोई बोल रहा है तो मैं समझता हूँ मुझे ठीक नहीं लगा।
बड़ा समर्थन
हो समझ गया,
नाविलाजा
है। अच्छा अच्छा मेरा अगर समझे ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने ऐसा लगा ये पृथ्वी योगी और एक समय सारी, अरे तुम क्या समय सारी भी हम है और पृथ्वी योगी भी हम है, ना तुम समय सारी हो ना कोमर सारी हो ना पृथ्वी योगी। तुमने पृथ्वी योग पढ़े हैं, पढ़ना जानते हो कैसा पृथ्वी योग का क्या रहस्य है, उसका रहस्य ख्याल में आया, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही है कि पृथ्वी योग में कहानियों के माध्यम से आत्मा अनादि अनंत समझा दिया, जो हम समय सार की गाथाओं से नहीं समझा पाते हैं। इसलिए बच्चों को पृथ्वी योग की कहानियां अवश्य पढ़ाना चाहिए, पूर्व भक्ति पर भक्ति, उनसे आत्मा कहीं से आया है और कहीं जाना है इतनी समझ में आएगा। और सब जीवों के प्रति एक सा करुणा भाव, अरे भाई हमारे पूर्वजों के तो रोने में भी पृथ्वी योग रहता था। आप तो पढ़ते हो ना, राजुल रोती थी, नैमिनाथ चले गए गिरनार तो राजुल रोती थी, तो क्या क्या कहती थी, नो भाव की मेरी प्रीत लगी है, क्या कहती थी, नो भव की भम्मन क्या, ऐसा नहीं कहा हे नैमिनाथ तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो 60 पीढ़ियों का है, हमारे और तुम्हारे पिताजी तो दोस्त थे और एक साथ शतरंज खेला करते थे बैठ के, और हमारे दादा और तुम्हारे दादा ताश खेला करते थे, और तुम्हारे परदादा और हमारे दादा शिकार खेलने साथ जब, सात पीढ़ियां नहीं खेलाई, पीढ़ियां तो शरीर की होती हैं और भव आत्मा के होते हैं, भव किसके होते हैं, आत्मा के। तो वो एक भव की बात करके मैं आत्मा हूं ये बताना चाहती थी, उसके रोने में भी आत्मा था और हमारे गाने में भी शरीर है। आप हमें नहीं जानते, हमें सात पीढ़ी से हमें करोड़पति है, सात पीढ़ी से हम बात करते हैं, हमारे पिताजी घर में बंद समय अच्छा बनी, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी कितने नाम मालूम हमें है ना। एक बात पूछूं, नाराज मत हो जाना, भगवान महावीर के पिताजी का क्या नाम था, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के घबराना नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है,
क्यों नहीं है मालूम, शास्त्र में नहीं लिखा,
लेकिन महावीर के भव तो लिखे हैं अनंत, नो भव नहीं, मरीज का और उसके पहले भीड़ का भव तो लिखे हैं अनंत, और पीढ़ी एक से आगे नहीं लिखी, बाप का नाम नहीं इसलिए लिख दिया कि अन्यथा कैसे पता लगता है किनके यहाँ पैदा भाई, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती तो बाप ही नहीं लिखते, तो बल्दियत तो स्कूल में भी लिखानी पड़ती है ना। अब समझ लो महावीर का चरित्र लिख रहे वो, लेकिन महावीर के बाप के बाप के बाप का नाम की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, तो उनका चरित्र थोड़ी लिख रहे, और महावीर के सैकड़ों पीढ़ियां सैकड़ों भव, और हमारी आज हम कहानी उपन्यास लिखने लग गए हैं कैसे, पीढ़ियों के भवों के नहीं। इसमें से क्या निकला कि जो देह को आत्मा मानते हैं वो पीढ़ियों की कहानियां लिखते हैं, जो आत्मा को आत्मा मानते हैं वो भवों की कहानियां लिखते हैं। ऐसा कहकर कि हम पूर्व भव की बात नहीं करें और इतिहास खोजे, माने इतिहास माने पीढ़ियां, क्यों बताओगे, जो कई छोड़ो जी के संतान में से तो कोई होगा, उनका हम है ना, कहीं पंडित जी कैसी बात करते हो, वे तो गोदिका थे, वो तुम तो भारे लो, चोडर मंजी के बच्चे के बच्चे के बच्चे कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि देह की पीढ़ी को पीढ़ी मानते ही नहीं थे। गोपाल दास बरैया की बोलो, हिसाब है ना पंडित गंधीधर जी ना उनके बेटे थोड़ी। अरे भैया ज्ञानी जन तो इसी को पीढ़ी मानते हैं कि उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य। और बेटों को कौन पूछता है कौन होंगे कहीं क्या होंगे क्या नहीं होंगे। बेटी विद्वत्ता में आए तो पूछे और इस क्षेत्र में नहीं आए तो कोई नहीं पूछे। धर्मात्मा तो आत्मा की पीढ़ियां पूछते हैं। शरीर में ही जो मंगने हैं जो अपनी लड़की की शादी करने आएगा वो हमारी देह की पीढ़ियां पूछेगा
कौन से गोत्र कौन से कुल हो कौन सी जाति के हो
क्यों बोलो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो दो लोग ये कहते हैं कि हम पूरा भव प्रभव की कहानियों को हटा दें वो प्रथमान योग में से धर्म हटाना चाहते हैं। देह की पीढ़ी को इतिहास बोलते हैं देह की पीढ़ी को। राजाओं का वर्णन मिलेगा क्यों फलाने राजा के बेटे वो फलाने के बेटे वो फलाने के बेटे वो। तो ये किसकी पीढ़ियां है बोलिए देह की पीढ़ियां। तो हम तो भगवान आत्मा है ना। तो ये प्रथमान योग की जो कहानियां हैं जिन्हें आप गप्पे कहते हो वे सत्य भी है सिद्ध भी है और सुंदर भी है। सत्य तो है ही सिर्फ इसलिए है कि हमें उससे आत्मा का भान होता है। और इतना लगता है कि भाई जैसा कि आज लोगों को लगता है कि भाई पापी मौज कर रहे हैं और धर्मात्मा पंडरी तुम जैसे चक्कर काटते हैं कहते नहीं कहते हैं। लेकिन उनको ये पता पढ़ना चाहिए कि मौज इतनी जीवन में नहीं है आगे नरक जाएंगे तब डंडे पड़ेंगे। इतना भान हो जावे तो ये जीवन में से पाप प्रवृत्ति भी हटे। अभी तो ये देख रहे हैं कि खूब पाप कर रहे हैं और मौज से रह रहे हैं। अब कर्म का फल तो अगले भव में आएगा इतनी जल्दी तो आता नहीं। पुराना पुण्य करके आए थे तो भोग रहे हैं तो पूरा भव प्रभव नहीं जानने से एक एक नुकसान भी हुआ है कि पाप करने वालों को सुखी देखकर लोगों को लगता है कि पाप से ही सुख होने वाला है। धर्म तो बहुत दूर रहा पुण्य में से भी भरोसा उठ जाने वाला है। मानिकन जी ये जो पैसा इकट्ठा किया है ना ये तुम्हारी अकल में बुद्धि ने नहीं किया है। ये जो पूरे पुण्य में भी कमाया होगा ना वो फल में आ रहा है। और अभी जो कर रहे हो उसका तो आगे जो भी स्वर्ग जो भी मिलेगा अपने परिणाम के अनुसार उसका पता तो आगे चलेगा। पर हमें समझते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से कमाया है तो प्रथमान योग ही नहीं। प्रथमान योग क्यों कि बच्चों को छोटी उम्र में कहानियां सुनने का शौक होता है। और देखिए हमने और आपने प्रथमान योग पढ़े थे तो हमें किसी को ये समझाना पड़ा कि आत्मा मरण के जन्म के पहले भी था। कोई मना करे तो हमको भी क्या पागलपन की बात करता है। और आज के बच्चे को हंसता है अगले जन्म के पहले कहीं से आए तो क्या है वो संस्कार है और कुछ नहीं है। क्योंकि हमने वो ही सुनते आ गए यहां से मर के वहां गया वहां से मर के यहां आया वहां से मर के यहां गया। इससे हमारे तो सारी बात ख्याल में आई है। और ऐसे ही जैन दर्शन में इतने भवों की बात कह करके और फिर में भगवान महावीर बन गए और मोक्ष चले गए। इससे इनडायरेक्ट में ये हो गया कि हम और तुम भी भगवान बन सकते हैं। जबकि और दर्शनों की बात हम समझ आए और दर्शन वाले को मानते हैं भगवान जुड़े हैं और हम जुड़े हैं और हमारा जैन दर्शन मानता है हमारा जैन दर्शन मानता है इससे कोई भी मानने वाला है। लेकिन कहानी पढ़ पढ़ के हमें साफ हो गया कि हम जैसे ही थे और लोग चले गए भगवान बन गए तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं बोलिए। ये जो बात है कि जैन दर्शन की ये इन कहानियों के माध्यम से जैसी अंदर में प्रवेश कर सकती है वैसी समय सार और गोमट सार के व्याख्यानों से नहीं। ये नहीं कहना चाहता हूं कि समय सार और गोमट सार के व्याख्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो समाज में ये वातावरण बन गया है कि जैसे समय सार इनका विरोधी है और ये समय सार के विरोधी है ऐसा नहीं है। समय सार के जो उदाहरण है समय सार में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है सारा प्रथमान योग उस बात का उदाहरण है। गोमत सार में जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है सारा प्रथमान योग उसका उदाहरण है। देखिए कैसे कि पाप करोगे तो नरक जाओगे पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे और पुण्य और पाप का अभाव करके वितराग भाव करोगे तो भगवान बन जाओगे मोक्ष जाओगे। ये सिद्धांत है समय सार का और गोमत सार का। गोमत सार में लिखा है ना पाप कर्म का फल नरक और पुण्य कर्म का फल स्वर्ग लिखा कर नहीं लिखा समय सार में लिखा कि पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान महान प्रकाश ली। तो एक प्रतिमान जो बताता है कि उसने पाप किए तो नरक गया, पुण्य किया तो स्वर्ग गया, और दोनों का अभाव करके धर्म किया तो मोक्ष चला गया। तो ये उदाहरण हुए ना उसके, जो समय सार गोविंद सार के उदाहरण है वो हे कैसे हो सकते हैं, वो पढ़ने लायक नहीं है, ये कैसे हो सकते हैं। भाग्य से हम वोई वोई पढ़ते थे और समय सार पढ़ते ही नहीं थे, तो थोड़ा ये पढ़े इसके लिए इसकी महिमा जाए बताई कि लोग इसे भी देखें तो हमें समझ गया जैसा हम उसका विरोध कर रहे हैं। है ना, ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई चीज नहीं होती है तो उसके प्रति उत्सुकता होती है, वो पहले आती है, इसका मतलब वो किसी का विरोध नहीं होता है। दुनिया में तो इसे विकास कहते, कैसे सुनो इस सिनेमा चलते ना तो पहले बिना बोलती फिल्म थी, फिर तो बोलती फिल्म आई, तो सिनेमा का विकास हुआ। ये कहे ये बिना बोलती फिल्म के प्रति हत्या है, क्योंकि अब बिना बोलती फिल्म बाजार में से हट गई, और जिनने बिना बोलती फिल्में बनाई होंगी और जो बोलती फिल्म आई होगी तो उन्हें नुकसान भी हुआ होगा, तो उन्होंने उनका विरोध भी किया होगा, तो लगा तो ऐसा होगा ये परसों विरोधी है बोलती फिल्म बिना बोलती भी। लेकिन वो सिनेमा के विकास की कहानी है कि विनाश की कहानी है, विरोध की कहानी है। बोलिए अब तुम्हारा जो आ गया वीडियो और टाकी ने शूटिंग होने लग गई तो 3D फिल्में आने लग गई जो वीडियो पे नहीं आ सकती है। तो ये भी सिनेमा के विकास की कहानी है या विनाश की, विकास की कहानी है ना। तो ऐसे ही शुरू में ऐसा लगता है कि जब वो कह रहे समय सार पढ़ो, इस सभा में भी समय सार, पंच कल्याणक में भी समय सार, पद्म पुराण भी पढ़ते हैं। भैया पद्म पुराण जिंदगी भर पढ़ा, समय सार पढ़ो ना, 60 वर्ष में करके पद्म पुराण पढ़ते पढ़ते तो लोग विरोध सा लगता है। लेकिन वास्तव में ये विरोध की कहानी नहीं है, ये विकास की कहानी है, एक दूसरे के पूरक है। हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें तत्काल ऐसा लगता है कि भाई ये बात है। और कसदाचार की बात नहीं करते हैं, ये तो कहते हैं सारी जिंदगी तुमने क्रियादान किया और मोक्ष नहीं हुआ, अब आत्मा को समझो, शराब नहीं पिया, मांस नहीं खाया, इसमें क्या गदर किया, ये तो तुम्हें माँ बाप से संस्कार में मिला है। दुर्भाग्य सौभाग्य से हम ऐसे कुल में पैदा हुए हैं कि जहाँ यदि शराब की गंध आ जाए तो हमारे जीव मिचलाने लगे, और मांस का टुकड़ा देख रहे तो उस दिन हमसे रोटी न खबे, और यदि हम एक पवित्र रहे हैं तो इसमें हमारा क्या है, ये तो हमारे बाप दादों की कमाई है। क्योंकि हम ऐसे कुल में पैदा हो गए होते कि जन्म भूमि में भी हमें शराब पिलाई जाती और उसी ने हमारे सामने बकरा कटता तो हम ठाट से वो कहते हमें कुछ नहीं होता। ये इतना हमारे जीवन में पवित्रता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई घमंड करने की बात नहीं है। ये तो बाप कमाई है, आप कमाई नहीं है, ये तो हमारे परम पुण्य का उदय है कि हम ऐसे पुल में और ऐसे संस्कार में पैदा हुए। यदि उससे नीचे गिरते हैं तो हम जैसा नालायक दुनिया में कोई दूसरा होगा नहीं। इतना पवित्र कुल पाकर के भी हमने उस मर्यादा को निभा नहीं पाया। लेकिन हम कहते हैं कि तुम इतने से ही समझ लेना कि पंडित जी हमने तो आज तक शराब की बूंद नहीं पी, हम तो 8 बजे घर आ जाते हैं, क्योंकि वो रात का तो मिलने उन लोगों से होता है, खाने पीने वालों से हमारा कोई काम नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा घर बहुत आनंद से है, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसका फल तो तुम्हें मिल गया, लेकिन इसमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। ये तो बाप कमाई है, तुमने क्या किया, तुम अपने आत्मा को समझो, तब मनुष्य भक्ति सार्थकता होगी। हम ऐसा कहते हैं तो तुम मांस नहीं खाते हो तो कोई गलती करते हो, ऐसा नहीं कह रहे। इसका कैसा हुआ, जरा प्रशंसा तो करते, प्रशंसा भी करेंगे भगवान की, तुम्हारी प्रशंसा करने नहीं आए हैं, तो मैं तो एक कदम आगे बढ़ जाओ ये समझाने आए हैं। स्तुति और प्रशंसा करने के लिए भगवान ही बहुत है, विद्या कही है, है? समझ में आ, जो भगवान की स्तुति प्रशंसा छोड़कर अपने श्रोताओं के गीत गाने लग जाए, भगवान का वो प्रतिनिधि है कि इनका बोलो, ये पंड कल्याण तो भगवान के प्रतिनिधि बन के आए हैं, तुम्हारे प्रतिनिधि नहीं है। तुम्हारे प्रतिनिधि बन के चुन के जब लोकसभा में भेजना तब तुम्हारी बात वहां कहेंगे। हम तो भगवान के प्रतिनिधि बन के आएंगे, उनकी बात कहनी है कि इसमें तुम्हारा क्या, ये तो कुल की कमाई है, ये तो माँ बाप की दी हुई संपत्ति है कि हमें जो इतना सदाचार है। लेकिन हमें अपने आत्मा परमात्मा को समझना, ये जो हम कहते हैं वो कोई मांस भक्षण के सपोर्ट में थोड़ी कहते हैं कि वो छोड़ दिया तो क्या किया, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाने लग जाए, अरे भाई कहां से लाया खाने लग जाए, कहां से लाया, वो किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके बिना तो आत्मा की बात सुनने को भी नहीं मिलती। लेकिन समझ लो क्या पुण्य पाप का खेल है, यदि पंच कल्याण हो रहा है, इतना बड़ा पंच कल्याण पंडाल बनाया, भरेगा इसका चिंता नहीं, भरेगा कब, जब वो रविंद्र के गाने होंगे तब, जब वो नृत्य होगा तब, यानी भगवान के पंच कल्याणक में भी वो विषय कसाय की बात ही खोजने हम आते हैं, समझ लेना। पंच कल्याण के मेले में भी तत्व की बात कहाँ है, किसे प्रेम है, इसलिए तुम्हारा तो ये महाभाग्य है कि ऐसा होने के बाद इस तत्व की बात सुनने के लिए भी तुम्हें समय मिला, तुमने निकाला, मिला क्या निकाला है, मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है किसी को। बहुत से लोग कहते पंडित जी आप क्या बात कहते हो, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, मैंने कहा तुम बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि फुर्सत मिल गई होती तो अभी तक कभी के मर गए होते, इसीलिए नहीं मरेगा क्या, समझ में। तो अभी अभी यहाँ ये जो महाभाग्य हमारा है, ये महाभाग्य इससे भी बड़े महाभाग्य में परिवर्तित हो इसके लिए है ना, कि इतने मात्र के लिए, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कही जाती है कि भाई तुम स्वयं भगवान हो, ये जैन दर्शन का अद्भुत सिद्धांत है जो जगत के सामने रखा, और इन पंच कल्याणकों के माध्यम से यही बताते हैं कि तुम यही मत समझो कि मैं हो भव, तुम हो भव भव नाथ मेरे, मैं सदा सेवक रहूंगी वाली बात छोड़ दो, खत्म करता हूँ दो मिनट में, और ये बात रखो कि जब लो नहीं नाश करो अरिको, सिर नार बरी समता धरिको, तब लो शुभ भाव स्वागत है, तब लो सत्संगति मित्र है, तब लो मम संयम चित्र है, कर लो कि जब लो नहीं नाश करो अरिको, सिर नार बरी समता धरिको। भगवान मेरा विचार कुछ और है कि क्या विचार है बेटा तुम्हारा, कि तुम्हारे बगल में बैठने का विचार है, सिद्ध सदा में तुम्हारे साथ बैठने का विचार है, ये पंच कल्याण ये जैन दर्शन, तुम स्वयं भगवान हो, और जैसा प्रसाद भगवान ने अपने जीवन में किया यदि तुम करो तो पर्याय में भी भगवान बन सकते हो, ऐसी पवित्र की बात का प्रदर्शन का नाम है पंच कल्याणक महोत्सव। अब गरीब कल्याण की क्रियाएं आरंभ होंगी, बाकी बात अभी शाम को करेंगे।